आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूँ शशि कुमार। बोंडाई बीच पर हुए आतंकी हमले के बाद न्यू साउथ वेल्स में विरोध प्रदर्शनों के अधिकार को सीमित करने वाले कानूनों के संसद से पारित होने की संभावना है। इसके लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया है। वहीं कई संगठनों के व्यापक गठबंधन ने प्रस्तावित सुधारों का कड़ा विरोध किया है तथा इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। इन कानूनों को हाईकोर्ट में संवैधानिक चुनौती देने की घोषणा भी की गई है। हालांकि सरकार अपने रुख पर अडिग है। पैलेस्टाइन एक्शन ग्रुप के आयोजक जोश लीच का कहना है,
The constitutional challenge we're launching, we plan to have three co-applicants to that, and that's going to be the Palestine Action Group, Jews Against the Occupation, and the Black Caucus, who have a big interest in this in a pressing sense, because of course there is the annual Invasion Day march coming up on the 26th of January. We have record levels of black deaths in custody going on right now under this Chris Minns government, and that is one crucial pressing reason why we need to preserve the right to protest.
पैलेस्टाइन एक्शन ग्रुप गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों का आयोजन करता रहा है। न्यू साउथ वेल्स काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज, ज्यूइश काउंसिल फॉर ऑस्ट्रेलिया और अन्य संगठनों ने भी इन सुधारों का विरोध किया है। राज्य के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने कानूनों का बचाव करते हुए कहा है कि आतंकी घटनाओं के तुरंत बाद विरोध प्रदर्शनों की अनुमति देने से सामाजिक सौहार्द को खतरा हो सकता है।
These are important changes, but they're necessary, we believe, to live up to the number one priority of any government in office, the number one priority for any political leader, any government or any parliament, and that is to protect its citizens.
उन्होंने बताया कि ये कानून कैसे काम करेंगे।
When a terrorist incident is formally declared under the Terrorism Police Powers Act, the police commissioner or deputy commissioner of police, with the agreement of the minister for police, will be able to declare a specific area where the public assemblies are restricted for a period of time. A public assembly restriction declaration. That might be any part of the state or all over the state. No public assemblies in the designated area will be able to be authorized, including by a court.
मिन्स का कहना है कि सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए इन कानूनों की जरूरत है और बड़े पैमाने पर होने वाले प्रदर्शनों से अनियंत्रित स्थितियां पैदा हो सकती है।
My view about these protests has been that it is unleashing forces in our community that are not being contained. When you see people marching and showing violent, bloody images, images of death and destruction, it's unleashing something in our community that the organizers of the protest can't contain. And the truth of the matter is, we can't risk another mass demonstration on that scale in New South Wales. The implications can be seen, in my view, on Sunday.
जोश लीज ने यहूदी विरोधी बोंडाई हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि पैलेस्टाइन एक्शन ग्रुप का निकट भविष्य में किसी प्रदर्शन का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उनका कहना है कि इन कानूनों के जरिए फिलिस्तीनी समर्थन आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
It is a concerted campaign being waged by some to try to link the horrific Bondi attack to the Palestine protest movement is so ludicrous, it's so deliberately dishonest and it is so outrageous.
न्यू साउथ वेल्स ज्यूइश बोर्ड ऑफ डेप्टीज ने इन कानूनों का समर्थन किया है, हालांकि उन्होंने SBS को साक्षात्कार देने से इनकार कर दिया। इसके विपरीत ज्यूइश काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने इन कानूनों का विरोध किया है। ज्यूइश काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की कार्यकारी सदस्य डॉक्टर नामा ब्लैटमैन का कहना है,
The anti-protest laws being pushed through by the Means government are not going to make us safer. These laws are born of political pressure. Not a genuine consideration for the safety of our communities. What happened in Bondi was an evil anti-Semitic attack. But let it be very clear, there is nothing connecting this attack to the movement for justice in Palestine.
Dr. Blattman ne apni zyadatar zindagi Israel mein bitayi hai. Ve kehti hain ki yah zaruri hai ki Israel ki sarkar ko zimmedar thehraya jaye.
We are furious about these statements as they dangerously and outrageously link our criticism of Israel and the genocide it's committing in Gaza to the radical Islamic State ideology that seems to have informed and inspired the attack in Bondi. But as we have made abundantly clear over these past 2 years and prior, criticism of Israel, as harsh as it may be, is not equivalent to anti-Semitism.
संसदीय बहस से पहले कोलिशन ने इन कानूनों का समर्थन करने का संकेत दिया था, जबकि ग्रीन्स पार्टी ने इन कानूनों का विरोध किया है। ग्रीन्स की जस्टिस और अटॉर्नी जनरल की प्रवक्ता शू हिंगिंसन उन नेताओं में हैं जिन्होंने हार्बर ब्रिज पर आयोजित आइकॉनिक मार्च फॉर ह्यूमैनिटी में हिस्सा लिया था। उनका कहना है,
Nearly 300,000 good Australians came together. They marched across the bridge for our united good humanity. You cannot now rewrite history. That is an event that happened in our time, on our watch. It was a profound moment. People from everywhere came in the pouring rain and they marched for humanity. We marched together.
पुलिस ने हार्बर ब्रिज पर हुए उस विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अदालत ने पुलिस की दलील नहीं मानी, लेकिन अब इस तरह की सुरक्षा प्रस्तावित कानून से खत्म हो जाएगी। संवैधानिक विशेषज्ञ प्रोफेसर एन टूमी का कहना है कि यह अदालत तय करेगी कि क्या ये कानून राजनीतिक अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ हैं या नहीं।
So in this particular circumstance, there are sort of, you know, points on both sides. So on one side, the law itself doesn't actually ban protest. Okay, all it does is take away the ability to authorize the protest.
वहीं दूसरी तरफ उनका कहना है कि कानून काफी व्यापक है.
We've got the fact that it actually is very broad because it applies to all public assemblies, regardless of the nature of the public assembly. And it potentially applies to a really broad area, potentially up to the entire state, rather than just being focused on a particular area that has been impacted by a terrorist incident. So on the one side, it's probably overly broad. And on the other side, you've got some levels of protection. And the question then is going to be simply for a court as to how it balances those sorts of things.
अब यह अदालत पर निर्भर करेगा कि वह सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे स्थापित करती है। टी मिचेल की SBS न्यूज की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी के लिए प्रस्तुत किया शशि कुमार ने।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।